हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उसने वहां देखा, अमन पूरी तरह से तड़प रहा था। अमन की ऐसी हालत देखकर तारा बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि अमन के जिस्म पर पिशाच पूरी तरह से हावी हो चुका था। अमन बिल्कुल इस तरह से तड़प रहा था मानो जल बिन मछली। तारा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि पिशाच पूरी तरह से अमन के रग रग में उसके जिस्म में पूरी तरह से वास कर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो अमन के जिस्म में वो पिशाच एक आत्मा की तरह था, और पिशाच को किसी के जिस्म से निकालना बहुत बड़ी बात थी। अमन अब बहुत ही ज्यादा दर्द में था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अमन की आंखों में आंसुओं की जगह एकदम लाल सुर्ख पानी निकल रहा था। तारा को उस वक्त अमन पर बहुत ही ज्यादा दया आ रही थी और साथ ही साथ प्यार भी। आखिरकार अमन उसकी मोहब्बत उसकी आंखों के सामने इतनी बुरी तरह से तड़प रहा था, तारा को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। देखते ही देखते दोनों मियाँ बीवी जिन्नातों ने अमन के ऊपर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ उस लोटे में जो पिशाच का बाल रखा हुआ था उसे उन्होंने अमन के बालों में बांधकर उस आग में फेंक दिया, और उस आग की जो लपटें थीं अचानक वो सब एक पानी की तरह एक लोटे में कैद हो गई थीं। जैसे ही तारा ने ये देखा वो काफ़ी हैरान हो गई थी। वाकई ये बहुत ही ज़्यादा अनोखा जादू था। आग का पानी बनना कोई आम बात नहीं थी। जैसे ही उन लोगों ने अपना हवन पूरा किया और वो पानी उन्होंने अमन को पिला दिया, देखते ही देखते अमन के बाल बिल्कुल छोटे होने लगे थे, उसके हाथों के नाखून सब कुछ छोटे छोटे होने लगे थे, और देखते देखते अमन का हैंडसम चेहरा सबकी आंखों के सामने था। तारा कितनी देर तक नम आंखों से अमन को देखती रही थी। कहीं ना कहीं तारा अमन को वापस पहले वाले रूप में पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, वरना अमन का ये वाला रूप देखने के लिए तारा पिछले कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा तड़प रही थी। जैसे ही करिश्मा और अमरेंद्र जी ने अमन को बिल्कुल ठीक सही सलामत देखा तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग ले आई थी। तभी जिस लोटे में उन्होंने पानी अमन को पिलाया था उसमें उन्होंने देखा कि उसमें काफ़ी सारा लाल रंग का पानी जमा हो गया था। तब तारा ने उन दोनों मियाँ बीवी जिन्नातों से ये पूछा था, आखिरकार आप लोगों ने तो इस सुनहरे लोटे में से अमन सर को पानी पिलाया था, तो फिर ये लाल रंग का खून कहाँ से आया? तभी वो दोनों मियाँ बीवी तारा की ओर देखते हुए कहने लगे थे, बेटी ये पानी नहीं है बल्कि ये पिशाच का खून है। ये वो सारा खून है जो अमन के जिस्म के अंदर था, जिसे हमने निकालकर इस लोटे में कर दिया है। जितना पानी अमन के अंदर गया है उतना ही ये खून पिशाच का बाहर आ गया है। जैसे ही तारा ने ये देखा वो हैरान हो गई थी। उसने कभी भी इस तरह का जादू नहीं देखा था, जिसे देखकर तारा काफी खुश थी। तभी तारा ने उन लोगों से कहा था, अमन सर को कितनी देर में होश आ जाएगा? तो उन लोगों ने कहा था, 3 घंटे के बाद अमन को होश आएगा। तब तक आप लोगों को इस पानी को लोटे समेत पिशाचिनियों के जंगल में जाकर फेंकना होगा जहाँ से ये आया है, क्योंकि अगर ये यहाँ नॉर्मल इंसानियों की बस्ती में रहा तो पूरी इंसानियत को इससे खतरा हो सकता है। जैसे ही उन मियाँ बीवी जिन्नातों ने ये कहा तारा चौंक गई थी, और वाकई उसे यकीन था कि वो जो कह रही थी सच कह रही थी। और तभी वो दोनों नेक जिन्नातों ने कहना शुरू कर दिया था, इस बीच हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि पिशाचिनियों का बाल आप लोगों के हाथ कैसे लगा? जैसे ही उन दोनों जिन्नातों ने ये कहा, अमरेंद्र जी तारा की ओर देखने लगे थे और कहने लगे थे, ये तो हमारी बहू लेकर आई थी। तभी वो तारा की ओर देखते हुए कहने लगे थे, लेकिन पिशाचिनियों का बाल उन्हीं के जंगल से लेकर आना बहुत बड़ी बात थी। आप नहीं जानते, पिशाचिनियों की सारी शक्ति उनके बालों में होती है, और आप वो बाल तोड़कर लाई थी। वाकई आप बहुत ज्यादा हिम्मत वाली हैं। जैसे ही उन्होंने तारा की इस तरह से तारीफ की, अमरेंद्र जी सोच में पड़ गए थे और करिश्मा जी की ओर देखकर कहने लगे थे, क्या तुम्हारी बहू वाकई कोई इंसान है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इंसान नहीं है, कोई और है, क्योंकि इतनी समझ इतनी शक्ति भला किस में हो सकती है? किसी इंसान की तो बस की ये बात नहीं है। तभी करिश्मा की बात बदलते हुए कहने लगी थी, शायद आप भूल रहे हैं, जिन्नातों का वंशज उसके पेट में पल रहा है। इतना ही नहीं, तपस्वी महाराज की ये पिछले जन्म में बेटी भी थी, जिन्होंने तारा बेटी को शक्तियां दी हैं, तो ये नॉर्मल इंसान कहाँ हुई? करिश्मा जी की बात सुनकर अमरेंद्र जी कुछ नहीं बोल पाए, और आगे कुछ बोलने का उनके पास कोई कारण नहीं था। तभी तारा ने करिश्मा जी से कहा था, मॉम अब इस लोटे का जो खून है इसका क्या करना है? तभी करिश्मा जी कहने लगी थी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं और अमरेंद्र जी ले जाकर पिशाचिनियों के जंगल में फेंक आएंगे। तब तक तुम अमन को लेकर घर चले जाना, ओके? और अगर कुछ भी परेशानी हो तो हमें बताना, बिल्कुल मत भूलना। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा तारा हल्का सा मुस्कुरा रही थी, और वो दोनों मियाँ बीवी तारा की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगे थे। जैसे ही तारा ने उन्हें इस तरह से अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा तो वो हैरान हो गई थी, और वो उन्हें कहने लगी थी, आप लोगों को इस तरह से मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या हुआ है? तभी वो नेक मियाँ बीवी में जो उनकी बीवी थी वो जिन आगे आई थी और तारा के सर पर हाथ रखकर कहने लगी थी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा। तारा परी, क्या क्या? जैसे ही तारा ने उन लोगों के मुंह से अपना नाम परी सुना, वो हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, आप? जब हमने ये सुना कि पिशाचिनियों के जंगल से बाल आप लेकर आई हैं, तभी हमें शक हो गया था। और जैसे ही हमने हल्का सा मंत्र पढ़कर आपकी पहचान जानने की कोशिश की, तो आपका परी वाला रूप हमारे सामने था। तारा परी, हम अच्छी तरह से आपका मिशन समझ चुके हैं और हम ये बात भी समझ चुके हैं कि आप इस पृथ्वी पर क्यों आई हैं। लेकिन हम आपको कुछ कहना चाहते हैं, आप पर, आपके होने वाले बच्चे पर और साथ ही साथ जिन महाराज अमन पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर आप लोग उसे खतरे से बचा गए तो ही शायद आप अपने आप उस राक्षस से मुकाबला कर सकती हैं और हमेशा हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा सकती हैं। लेकिन ये आने वाले 4 महीने आपके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन साबित होने वाले हैं। जैसे ही उन नेक जिन्नातों ने ये कहा, तारा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और कहीं ना कहीं वो भी आने वाले खतरे को लेकर अब सोचने लगी थी। और तभी वो मियाँ बीवी दोनों ही तारा को ढेरों आशीर्वाद देते हुए वहाँ से गायब हो चुके थे।
तारा उनके जाने के बाद सोचती ही रह गई थी और तभी तारा ने सोचा कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से अमन को लेकर बंगले में भी जाना है और सब कुछ ठीक भी करना है। और इतना ही नहीं, जिन 7 लोगों को अमन ने काटा है उन्हें भी ठीक करना है, क्योंकि अब उनके ठीक होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसीलिए तारा ने जल्दी ही अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सबसे पहले अमन को वहाँ से सीधा अपने बेडरूम में यानी कि बंगले में भेज दिया था। और उसके बाद उन्होंने 7 आदमियों को, जितने भी उस वक्त जिनका अमन ने बुरी तरह से खून चूस लिया था, उन पर अपनी छड़ी, अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते हुए जान फूंक दी थी। और वो लोग सीधा अपने अपने केबिन में अपने अपने टेबल पर जाकर बैठ गए थे और तारा खुद भी वहां से गायब हो चुकी थी। और जाने से पहले वो 3 बार चुटकी बजाना नहीं भूली थी। जैसे ही तारा ने चुटकी बजाई, जितने भी लोग उस वक्त प्रभावित हुए थे वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे और जो कुछ भी ऑफिस के अंदर हुआ था वो सब कुछ भूल चुके थे और खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे। तारा अमन को लेकर बंगले में पहुंच चुकी थी और अमन को देखकर वो जानती थी कि अमन को 3 घंटे से पहले होश नहीं आने वाला था। तारा ने अमन को अपने कमरे में उसके बेड पर बहुत अच्छी तरह लेटा रखा था। अमन ने जो कपड़े पहन रखे थे तारा ने उन्हें भी बदल दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि जब अमन को होश आए वो अपने आप को पहले वाले लुक में देखे और बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि तारा को अब कुछ ऐसा करना था जिससे अमन जब एक बार होश में आ जाए तो उसे बिल्कुल भी इस बात का एहसास ना हो कि आखिरकार वो क्या करने वाला था। क्योंकि होश में आने के बाद अमन को इस बात का बहुत ही शिद्दत से एहसास होने वाला था कि वो एक पिशाच बनकर अपने ही तारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अमन सपने में भी इस बात के बारे में नहीं सोच सकता था कि तारा को उसकी वजह से किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। कहीं ना कहीं तारा इस बात की तैयारी करने लगी थी कि जब अमन को होश में आएगा तो वो उसे किस तरह से हैंडल करेगी। तारा ने थोड़ा सा आगे बढ़कर अमन की शेविंग भी अच्छे से कर दी थी। वो चाहती तो सब कुछ अपने जादू से भी कर सकती थी, लेकिन वो उस वक्त अमन के ऊपर किसी तरह का कोई जादू का प्रयोग नहीं कर रही थी, क्योंकि अमन के छोटे छोटे काम करना उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतना ही नहीं, ये उसके दिल को काफ़ी सुकून पहुँचा रहा था। अमन का सारा काम करने के बाद तारा कुछ पल बैठ गई थी और कहीं ना कहीं उसके दिल में, दिमाग में उन मियाँ बीवी जिन्नातों की कही हुई बातें गूंजने लगी थी। और कहीं ना कहीं तारा ने इस बात के बारे में जानने का फैसला कर लिया था कि आखिरकार ऐसी क्या मुसीबत थी जो उन पर आने वाली थी, जिनका जिक्र वो नेक मियाँ बीवी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित मल्लिका को लेकर अपने महल में पहुंच चुका था और वहां जाकर उसने मल्लिका को जी भर कर प्यार किया था। हालांकि उसने मल्लिका के साथ जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाया था, लेकिन उसने उसे इतने सारे किस किए थे जिससे मल्लिका काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। लेकिन उसमें काली शक्तियों के मालिक अमित को रोकने की हिम्मत नहीं थी। उस वक्त वो डायन से अपना पीछा छुड़ाने की खुशी सेलिब्रेट करना चाहता था, जो सिर्फ और सिर्फ मल्लिका की वजह से ही पूरी हुई थी। तभी बातों ही बातों में मल्लिका ने काली शक्तियों के मालिक अमित से पूछा था, मालिक आखिरकार अमन कहाँ गया है और उसके बारे में हमें कुछ क्यों पता नहीं लग पा रहा है, 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। अमन केवल 7 दिन की विदेशी ट्रिप पर गया था, लेकिन अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, मुझे तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी काली शक्तियों का मालिक अमित मुस्कुराते हुए कहने लगा था, वो कहीं और नहीं गया था बल्कि वो तपस्या करने के लिए गया था ताकि वो जिन महाराज बन सके। शायद तुम्हें पता नहीं, ये अमन अब ऑलरेडी सफ़ेद जिन महाराज बन चुका है। क्या? या जैसे ही मल्लिका ने यह सुना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी और साथ ही साथ मन ही मन में खुश होने लगी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमन उसका फ्यूचर था। अचानक ही मल्लिका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी जिसे अच्छी तरह अमित ने देख लिया था और वो कहने लगा था, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद तुम भूल रही हो, अमन की शादी हो चुकी है और वो भी तारा से, जो कि मुझे अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ताकतवर लगती है। ये तो मैं नहीं जानता कि आखिरकार वो है कौन। इतना ही नहीं, काली शक्तियों के महागुरु भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिरकार वो लड़की है कौन और कहाँ से आई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है और अब तो उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त उसके पेट में जिन्नातों का वंशज पल रहा है। जैसे ही अमित ने ये कहा, मल्लिका के कानों में वो आवाज गूंजने लगी थी जब उसने काली शक्तियों के मालिक अमित का एक अंश जंगल में उस बूढ़ी औरत को दिया था जिसने उस वंश को पालने के बदले में सिर्फ और सिर्फ जिन्नातों का वंशज मांगा था। तो कहीं ना कहीं अब मल्लिका सोचने लगी थी कि अगर उसे अब जिन्नातों का वंशज चाहिए और अमन चाहिए तो उसे ज्यादा से ज्यादा अमन और तारा के करीब रहना होगा। इसके लिए वो कुछ भी करेगी। कहीं ना कहीं मल्लिका अपना ही एक अलग तरह का प्लान तैयार करने लगी थी। और वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित मल्लिका से कहने लगा था, तुम जानती हो अगर तुम सिर्फ एक बार अमन के साथ जिस्मानी रिश्ता बना लेती हो तो अमन के अंदर का तिलिस्मी पत्थर हमेशा हमेशा के लिए उसके जिस्म से बाहर निकल जाएगा और वो सीधा तुमसे जा मिलेगा, क्योंकि सफ़ेद जिन्नातों को किसी और गैर औरत के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने के बाद उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और अमन ये सारी चीज़ ऑलरेडी जानता है, क्योंकि अमन अपने पिता से कितने ही वर्षों तक दूर रहा था। तो अमन ये गलती जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसीलिए हमें उससे वो गलती करवानी ही होगी। अमित जल्दी ही पूरा प्लान सोचने लगा था।